Good afternoon. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says inauguration of world's largest aircraft maintenance, repair and overhaul LEAP engine MRO facility at Hyderabad and induction of INS Mahe into the Indian Navy reflect India's new thinking, innovation and youth power. In his Mann Ki Baat program on Akashvani, Prime Minister says India's food grain production has touched record high of 357 million tons, adding 100 million tons in last 10 years. Election Commission revises schedule for special intensive revision of electoral rolls in 12 states and union territories. Delhi police files fresh FIR against Congress leaders Sonia Gandhi and Rahul Gandhi and other accused in National Herald case. Cyclonic storm Ditwa likely to move northwards parallel to North Tamil Nadu Puducherry coast during next 24 hours. And in cricket, South Africa win toss and elect to bowl in first ODI against India in Ranchi. Prime Minister Narendra Modi has said that the recent developments like inauguration of the world's largest LEAP engine MRO facility in Hyderabad, induction of INS Mahe into the Indian Navy, unveiling of Skyroot's Infinity Campus in the country reflect India's new thinking, innovation and youth power. Sharing his thoughts in the Mann Ki Baat program of Akashvani, Mr. Modi said, achieving a major milestone in the agriculture sector, India has set a historic record with food grain production of 357 million tons.
साथियों, कृषि क्षेत्र में भी देश ने बड़ी उपलब्धि हासिल की. भारत ने 357 मिलियन टन के खाद्यान्न उत्पादन के साथ एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है. 357 मिलियन टन 10 साल पहले की तुलना में भारत का खाद्यान्न उत्पादन 100 मिलियन टन और बढ़ गया है.
The Prime Minister said India has also accomplished glory in the world of sports as it was declared the host of the Commonwealth Games just a few days ago. He said these achievements belong to the country and its citizens.
खेलों की दुनिया में भी भारत का परचम लहराया है. कुछ दिन पहले ही भारत को कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी का भी ऐलान हुआ. ये उपलब्धियां देश की है, देशवासियों की है और मन की बात देश के लोगों की ऐसी उपलब्धियों को लोगों के सामूहिक प्रयासों को जन सामान्य के सामने लाने का एक बेहतरीन मंच है.
Mr. Modi said November 2025 has been a super hit in terms of sports in India. He said the month began with the Indian women's team winning the ICC Women's World Cup.
कुछ दिन पहले ही टोक्यो में डेफ ओलंपिक्स हुए हैं, जहां भारत ने अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 20 मेडल जीते हैं. हमारी महिला खिलाड़ियों ने भी कबड्डी वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास ही रख दिया. वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स में भी हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा, जहां उन्होंने 20 मेडल जीते. जिस बात की और भी अधिक चर्चा हो रही है वो है हमारी महिला टीम का ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतना. बड़ी बात यह है कि हमारी इस टीम ने बिना एक भी मैच हारे इस टूर्नामेंट को जीता है. सबसे बड़ी जीतों में से एक है जो हर भारतीय को प्रेरित करती रहेगी.
The Prime Minister said India possesses every potential for winter tourism as it has mountains, culture and endless possibilities for adventure.
हमारे देश में भी विंटर टूरिज्म की हर क्षमता मौजूद है. हमारे पास पहाड़ भी हैं, संस्कृति भी है और एडवेंचर की असीम संभावनाएं भी है. मुझे खुशी है इन दिनों उत्तराखंड का विंटर टूरिज्म लोगों को बहुत आकर्षित कर रहा है. पिथौरागढ़ जिले में 14,500 फुट से अधिक की ऊंचाई पर आदि कैलाश में राज्य की पहली हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा रन मैराथन का आयोजन किया गया. आदि कैलाश की यात्रा पर जहां 3 साल पहले तक मात्र 2000 से कम पर्यटक आते थे, अब यह संख्या भी बढ़कर 30,000 से अधिक हो गई है.
Mr. Modi again urged people to carry forward the mantra of vocal for local. He said a few days ago during the G20 summit, he had reiterated the sentiment of vocal for local.
G20 के दौरान मैंने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति को नटराज की कांस्य प्रतिमा भेंट की. ये तमिलनाडु के तंजावुर की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी चोल कालीन शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है. कनाडा के प्रधानमंत्री को चांदी के अश्व की प्रतिकृति दी गई। यह राजस्थान के उदयपुर की बेहतरीन शिल्प कला को दर्शाती है। जापान के प्रधानमंत्री को चांदी की बुद्ध की प्रतिकृति भेंट की गई। इसमें तेलंगाना और करीमनगर की प्रसिद्ध सिल्वर क्राफ्ट की बारीकी का पता चलता है। इटली की प्रधानमंत्री को फूलों की आकृतियों वाला सिल्वर मिरर उपहार में दिया। ये भी करीमनगर की ही पारंपरिक धातु शिल्प कला को प्रदर्शित करता है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को मैंने ब्रास उर्ली भेंट की। ये केरला के मन्नार का एक उत्कृष्ट शिल्प है। मेरा उद्देश्य था कि दुनिया भारत के शिल्प कला और परंपरा के बारे में जाने और हमारे कारीगरों की प्रतिभा को ग्लोबल मंच मिले।
Referring to the 4th Kashi Tamil Sangamam, which will commence on the 2nd of next month at Namo Ghat in Kashi, Mr. Modi said, this year's program has a very interesting theme, Learn Tamil, Tamil Karakalam.
Kashi Tamil Sangamam, उन सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है जिन्हें तमिल भाषा से लगाव है। काशी के लोगों से जब भी बात होती है तो वो हमेशा बताते हैं कि काशी तमिल संगमम का हिस्सा बनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ उन्हें कुछ नया सीखने और नए नए लोगों से मिलने का अवसर मिलता है। इस बार भी काशीवासी पूरे जोश और उत्साह के साथ तमिलनाडु से आने वाले अपने भाई बहनों का स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप काशी तमिल संगमम का हिस्सा जरूर बने।
स्पीकिंग अबाउट हिज विजिट टू कोयम्बटूर टू पार्टिसिपेट इन अ मेगा कॉन्फ्रेंस ऑन नेचुरल फार्मिंग, मिस्टर मोदी सेड ही वाज डीपली इम्प्रेस्ड बाय द एफर्ट्स बीइंग मेड इन साउथ इंडिया टुवर्ड्स नेचुरल फार्मिंग।
कुछ दिनों पहले मैं नेचुरल फार्मिंग के एक विशाल सम्मेलन में हिस्सा लेने कोयम्बटूर गया था। दक्षिण भारत में नेचुरल फार्मिंग को लेकर हो रहे प्रयासों को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। कितने ही युवा हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल अब नेचुरल फार्मिंग फील्ड को अपना रहे हैं। मैंने वहाँ किसानों से बात की, उनसे अनुभव जाने। नेचुरल फार्मिंग भारत की प्राचीन परंपराओं का हिस्सा रही है और हम सभी का कर्तव्य है कि धरती माँ की रक्षा के लिए इसे निरंतर बढ़ावा दें।
The Prime Minister said India is setting new records in honey production. He said honey production in the country has now almost doubled during the last 11 years.
आज भारत हनी प्रोडक्शन में नए रिकॉर्ड बना रहा है। 11 साल पहले देश में हनी का उत्पादन 76,000 मैट्रिक टन था। अब ये बढ़कर 1.5 लाख मैट्रिक टन से भी ज्यादा हो गया है। बीते कुछ वर्षों में शहद का एक्सपोर्ट भी 3 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। हनी मिशन कार्यक्रम के तहत खादी ग्रामोद्योग ने भी 2.25 लाख से ज्यादा बी बॉक्सेस लोगों में बांटे हैं। इससे हजारों लोगों को रोजगार के नए अवसर मिले हैं। शहद की मिठास भी बढ़ रही है और ये मिठास किसानों की आय भी बढ़ा रही है।
This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. The Election Commission of India has revised the schedule for the ongoing Special Intensive Revision SIR of electoral rolls in 12 states and union territories. As per the revised notification, the Commission extended the deadline for enumeration to the 11th of next month. The draft electoral roll will now be published on the 16th of next month, and the final electoral roll will be published on 14th February next year. The SIR exercise is currently underway in Uttar Pradesh, Andaman and Nicobar Islands, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Kerala, Lakshadweep, Madhya Pradesh, Puducherry, Rajasthan, Tamil Nadu and West Bengal. The Delhi Police Economic Offences Wing, EOW, has filed a fresh First Information Report, FIR, against Congress leaders Sonia Gandhi and Rahul Gandhi in connection with the decade-old National Herald case. The FIR lodged following a complaint from the Enforcement Directorate, ED, alleges criminal conspiracy, cheating and criminal breach of trust tied to the acquisition of assets belonging to Associated Journals Limited, AJL, the publisher of the National Herald newspaper. The ED contends that a scheme was orchestrated to transfer AJL assets valued at more than 988 crore rupees to the private company Young Indian YI for a nominal 50 lakh rupees. Sonia and Rahul Gandhi, who together hold a 76% stake in Young Indian, are named as ultimate beneficiaries. The allegations focus on a 2010 transaction in which the All India Congress Committee assigned its right to recover an outstanding of 90.21 crore rupees loan from AJL to Young Indian for 50 lakh rupees. The government today held an all-party meeting at the Parliament House Annex ahead of the winter session of Parliament beginning tomorrow. Union Defence Minister Rajnath Singh chaired the meeting. Leader of the House in Rajya Sabha, J.P. Nadda, Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju, and Ministers of State for Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal and Dr. L. Murugan were present in the meeting. Congress leader Gaurav Gogoi, DMK leader Tiruchi Shiva, TMC leader Derek O'Brien, Samajwadi Party leader Ram Gopal Yadav, JDU leader Sanjay Jha, TDP leader Lavu Shrikrishna Devarayalu, and Shiv Sena leader Naresh Mahaske, among others, attended the meeting. Speaking after the meeting, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the meeting was held in a positive atmosphere. He said the government has appealed to the floor leaders of all political parties for cooperation during the winter session for smooth functioning of the two houses.
That is not correct. Within the opposition party, there are many floor leaders who are interested in running the house and also raising the issue. So it is not correct that all the opposition parties are prepared to stall the parliament proceedings by raising SIR issue only. The issue came up, but it is not that they are not interested to run the parliament.
The session will begin from tomorrow and continue till 19 December. The Conference of Directors General and Inspectors General of Police being held in Raipur will conclude today. Prime Minister Narendra Modi is chairing this conference for the last 2 days. Mr. Modi remarked that the conference witnessed extensive deliberations on different aspects of India's security system. The Prime Minister underscored that this forum serves as a vital platform to share best practices and innovations in the field of national security. Cyclonic storm Ditwa is likely to move nearly northwards parallel to North Tamil Nadu Puducherry coasts during the next 24 hours. While moving northwards, the cyclonic storm will be centered over southwest Bay of Bengal within a minimum distance of 60 kilometers by afternoon and 30 kilometers in the evening from the Tamil Nadu Puducherry coastline. Port signal number 5 has been hoisted at Chennai, Kadalur, Nagapattinam, Ennore, Kattupalli, Puducherry and Karaikal. Signal number 4 has been hoisted at Pamban and Thoothukudi. Widespread rains are likely in the coastal districts of the state. The Director General of Civil Aviation, DGCA, has said the software upgrade has been completed in 323 out of 338 affected aircraft in the country. These include the aircraft of IndiGo, Air India and Air India Express. The software upgradation is being done after the DGCA ordered an immediate halt to flights operated by the Airbus A320 family until airlines complete mandatory safety modifications. The DGCA stated that IndiGo has fully completed the software upgrade across its 200 aircraft, ensuring full compliance with the directive. Moving on to sports, in men's cricket, India was 72 for 1 in 9 overs against South Africa in the opening of the 3-match ODI series at the JSCA International Stadium Complex in Ranchi today when reports last came in. Earlier, the visitors won the toss and elected to bowl. Led by KL Rahul as the standing captain for the series, India will be eager to bounce back in a format they have traditionally dominated at home following a recent disappointing test series whitewash. Both Rohit and Virat Kohli returned for the ODIs. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says inauguration of world's largest aircraft maintenance, repair and overhaul LEAP engine MRO facility at Hyderabad and induction of INS Mahe into the Indian Navy reflect India's new thinking, innovation and youth power. In his Mann Ki Baat program on Akashwani, Prime Minister says India's food grain production has touched record high of 357 million tons, adding 100 million tons in the last 10 years. Election Commission revises schedule for special intensive revision of electoral rolls in 12 states and union territories. Delhi police files fresh FIR against Congress leaders Sonia Gandhi and Rahul Gandhi and other accused in National Herald case. Cyclonic storm Ditwa likely to move northwards parallel to North Tamil Nadu Puducherry coast during next 24 hours. And in cricket, South Africa win toss and elect to bowl in first ODI against India in Ranchi. And with that, we end the midday news.